आकाश को तृप्ति के जरिए पता चल चुका था कि आशिका किसी और के पास नहीं बल्कि अभिमान के पास है और वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। आकाश ने अभिमान के सामने सीधे सीधे शर्त रखी थी कि वो आशिका को उसे सौंप दे, बदले में उसे आशी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। आकाश का सच जानने के बाद अभिमान को झटका सा लगा था। आशिका जिस इंसान से छुपते हुए एले से इंडिया आ गई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बाप था। अभिमान को अच्छा मौका मिला था जब वो आशी से अपना पीछा छुड़ा सकता था, लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि आशिका ने उसके दिल में जगह बना ली है। वो पूरी जिंदगी खुद आशी के साथ सफर कर सकता था लेकिन आशिका को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकता था। अभिमान ने सीधे सीधे आकाश की शर्त को ठुकरा दिया था। आकाश से बहस हो जाने के बाद अभिमान सीधा आशिका के पास AR एम्पायर्स पहुंचा। वहीं आकाश ने उसके पीछे अपने सेक्रेटरी मार्क को लगा रखा था। जैसे ही आकाश को अभिमान के AR एम्पायर्स जाने की बात पता चली वो समझ गया था कि जरूर अभिमान ने आशिका को वहीं पर छुपा रखा है। आकाश भी AR एम्पायर्स पहुंच चुका था। मैं भी देखता हूं कि आज तुम मुझे उसे ले जाने से कैसे रोकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजरें डालने की। आकाश गुस्से में बड़बड़ाते हुए ऊपर जा रहा था। उसने नीचे सिक्योरिटी गार्ड से अभिमान के फ्लोर के बारे में पूछ लिया था। ऊपर आते ही आकाश ने एक झटके में अभिमान के केबिन का दरवाजा खोला तो सामने अभिमान लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां न जाने कितनी देर से काम कर रहा हो। अभिमान के दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई थी। वो सही वक्त पर केबिन में पहुंच गया था, वरना उसे ढूंढते हुए आकाश ऊपर भी जा सकता था। अभिमान ने आकाश की तरफ घूर कर देखा और रूखे अंदाज में कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपको यहाँ का एक्सेस किसने दिया? मैं कौन हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो, मुझे किसी तरह के एक्सेस की जरूरत नहीं है। इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहे हो, आकाश ने इधर उधर देखते हुए पूछा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि आशिका यहीं कहीं अभिमान के केबिन में छुपी हुई है। आपको दिख नहीं रहा, फुटबॉल खेलने आया हूँ, चीयर नहीं करोगे मुझे, अभिमान ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। केबिन के अंदर आने के बाद जिस तरह से आकाश हरे कोने को घूर कर देख रहा था उससे अभिमान सब समझ गया था। उसने आंखें सिकोड़ी और कहा, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वैसे भी अब आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। आशिका के वहां से भी चले जाने की बात सुनकर आकाश के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। वो अभिमान के पास आया और तेज आवाज में चिल्ला कर बोला, बेवकूफ समझते हो तुम मुझे, तुम्हें क्या लगा कि तुम झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? ठीक है फिर ढूंढ लीजिए, मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, अभिमान ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। तुम्हारी एक एक हरकत की सजा तुम्हें और तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी, अभी समझा रहा हूँ। उसे लेकर तुम्हारे मन में जो भी उल्टे सीधे ख्याल हैं अभी निकाल दो, उसे पाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, आकाश उसे समझाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली के सामने आशिका और उसका रिश्ता आए। आकाश कैसा भी इंसान क्यों ना हो लेकिन अपनी फैमिली के आगे एक आदर्श इंसान बनकर ही रहता था। कितने पैसे चाहिए आप मुझे बताइए, आपने उसे पाने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बदले में आपको उसका पीछा छोड़ना होगा, अभिमान ने जवाब दिया। अभिमान आकाश की बात मानने के बजाय उसके सामने ही शर्त रख रहा था। उसके जिद करने पर आकाश बुरी तरह चिढ़ गया और चिल्लाकर बोला, पैसों की अकड़ किसे दिखा रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की कमी है, मैंने कहा ना मेरी शादी उससे लगभग होने वाली थी, तुम क्यों उसके लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, तुम दोनों कभी साथ नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कब कहा कि मुझे उसके साथ आना है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है लेकिन उसकी नहीं होने दूंगा, अभिमान सिर हिलाकर बोला। आकाश के इतना समझाने के बाद भी अभिमान सुनने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वे आगे और बहस करते अभिमान बोला, आपके पास फ्री टाइम होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ कमिटमेंट्स क्लियर करनी है, बाकी मैंने आपको आशिका को ढूंढने से रोका नहीं है। अपनी बात खत्म करके अभिमान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया ताकि आकाश वहां से चला जाए। आकाश ने एक नज़र अभिमान को घूर कर देखा और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही अभिमान ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, थैंक गॉड फिलहाल के लिए इससे पीछा छूटा, लेकिन अभी ने मुझ पर शक हो गया है तो ये मुझ पर हर वक्त नजर रखेंगे, मुझे कैसे भी करके आशिका को इनसे प्रोटेक्ट करना होगा। अभिमान ने CCTV फुटेज में जब आकाश को वहां से निकलते हुए देखा तब वो वापस आशिका के पास पहुंच गया। आशिका अभी भी परेशानी में लिविंग एरिया में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अभिमान को देखकर वो जल्दी से उसके पास गई, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। अभिमान ने आशिका की आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, फिलहाल के लिए चले गए हैं लेकिन बाद में वापस आ जाएंगे, आशिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वे तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरा यकीन करो, इससे सेफ जगह तुम्हारे लिए कुछ और नहीं हो सकती, अभिमान ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। उन्हें इस जगह का पता चल चुका है, आज नहीं तो कल वे मुझे ढूंढ ही लेंगे, आशिका ने परेशान स्वर में कहा। अभिमान ने उसे आश्वासन दिया, उसने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बता दो कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए इससे ज्यादा सेफ जगह है,
तुम्हारी मॉम और स्टेप सिस्टर भी यहाँ पर हैं। उन्हें बस तुम्हारी एक छोटी सी गलती का इंतजार है। जैसे ही तुम बाहर निकलोगी वे तुम्हें पकड़ लेंगे। थोड़ा इंतजार कर लो ऐश, इस बार मैं अपने काम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। अभिमान की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसकी बात सही भी थी। आकाश इस बार किसी भी हाल में आशिका को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन हर छोटी जगह पर अपने आदमी फैला रखे थे। एक बार पहले भी आशिका पकड़ी गई थी, इसलिए वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। मजबूरी में ही सही, उसे अभिमान के घर में रुकना पड़ रहा था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। रात काफी हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, आशिका बोली। ये भी मेरा ही घर है और मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला। तुम काफी थकी हुई नजर आ रही हो, थोड़ी देर आराम कर लो, अभिमान ने जवाब दिया। आशिका भले ही जताए ना, लेकिन अभिमान जानता था कि आकाश के चलते वो ठीक से सो नहीं पाएगी और उसे हर वक्त यही डर सताएगा कि आकाश वहां ना आ जाए। बस उसी के लिए वो वहां रुक रहा था। आशिका ने भी उसे रुकने के लिए मना नहीं किया। उसे सच में किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। आशिका ने अभिमान को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अगर मेरी शादी आशी से नहीं हुई होती तो आकाश राजवंश से बचाने के लिए मैं तुमसे शादी भी कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली मेरी खुशियों के बीच में हमेशा वो आशिका सिंघानिया आ जाती है, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। वो भी थका हुआ था, लेकिन सोने के बजाय वो बाहर बैठकर काम कर रहा था ताकि आशिका चैन से सो सके। इशिका को खुद के साथ कंफर्टेबल करवाने के लिए अभिमन्यु ने उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन उस लड़के के तौर पर करवाया था जो बचपन में उसके साथ किडनैप होने के बाद उस तहखाने में रहता था। अपने बचपन का प्रॉमिस निभाते हुए जब अभिमन्यु ने इशिका के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो वो काफी खुश हुई थी। लेकिन अभिमन्यु के बारे में जानने की उत्सुकता में जब उसने उसकी पत्नी के बारे में एक न्यूज आर्टिकल देखा तो इशिका काफी परेशान हो गई।
इशिका को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था कि सब उससे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से जब उसने नक्श को कॉल किया तो नक्श ने भी ठीक से कुछ नहीं बताया था। राधिका ने भी उसे सोने का कहकर टाल दिया था। इशिका सो तो गई थी, लेकिन अभिमन्यु को उसकी कश्मकश के बारे में पता चल चुका था। ऊपर से घर लौटने पर पृथ्वी ने भी इशिका के कॉल के बारे में अभिमन्यु को सब बता दिया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इशिका और मुझसे जुड़े रीसेंट सभी न्यूज आर्टिकल्स हट जाने चाहिए, फिर वो एक न्यूज आर्टिकल कैसे रह सकता है, अभिमन्यु गुस्से में बोला। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ डिलीट करवा दिया था। मुझे ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। मिस सिंघानिया के कॉल के बाद मैंने हमारी टीम को उस आर्टिकल के बारे में पता करने के लिए कहा तो वो आर्टिकल पूरी तरह डिलीट हो चुका था। हैरानी की बात है कि जब आप दोनों की शादी रिवील हुई थी तब आर्टिकल्स आपकी फोटो के साथ मिस सिंघानिया की तस्वीर भी थी, लेकिन जिसने भी वो आर्टिकल पब्लिश किया उसमें उनकी फोटो क्लियर नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उनके दिमाग में शक पैदा किया है ताकि वे आप दोनों को दूर रख सकें, पृथ्वी ने सफाई देते हुए कहा। अभिमन्यु के कहे बिना ही उसने काफी कुछ रिसर्च कर ली थी। अब इन सबका कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से कल रात इशिका को यकीन दिलाया था। वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी और आज नहीं तो कल वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देती, पर अब सब गड़बड़ हो गई। उसे यही लग रहा होगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, अभिमन्यु परेशान लहजे में बोला। उसके साथ साथ पृथ्वी भी परेशान हो गया था। उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद इशिका को अभिमन्यु से जुड़ी कुछ भी बातें याद नहीं आ रही थी। ऊपर से अब तो उसे ये भी शक हो गया था कि अभिमन्यु एक अच्छा इंसान नहीं है। अपनी पत्नी के होते हुए भी वो किसी और के साथ शादी करना चाहता है। अभी तो उन्हें नक्श से भी निपटना था, जबकि इशिका की तरफ से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। कुछ पल रुककर पृथ्वी ने पूछा, नक्श का क्या करना है? मिस सिंघानिया के दिमाग में ये सब बातें उसी ने डाली होंगी, छोड़ दो उसे, अभिमन्यु ने अचानक कहा तो पृथ्वी चौंक गया। क्या क्या कहा आपने? क्या आप चाहते हैं कि मैं नक्श राजवंश को जाने दूं? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने यही कहा कि उसे जाने दो, नक्श अकेला नहीं है, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, वरना वो आर्टिकल अचानक से अपलोड होना और डिलीट हो जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे वार्निंग देकर छोड़ दो, जरूर वो उस इंसान से मिलेगा जो उसका साथ दे रहा है। आगे क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। पृथ्वी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि अभिमन्यु क्या चाहता है। अभिमन्यु अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रात को तो राधिका ने इशिका को ब्राल दिया था, लेकिन अगली सुबह उनके लिए नई मुसीबत लेकर आई थी। प्रेगनेंसी की वजह से इशिका को सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो रही थी। इशिका इस बारे में डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती, उससे पहले ही उसका जी मिचलाने लगा और वो दौड़ते हुए बाथरूम में गई। बाकी चीजें छुपाने के लिए अभिमन्यु और केशव सिंघानिया कितनी भी कोशिश करें, लेकिन इशिका की प्रेगनेंसी ऐसी चीज थी जो ज्यादा देर तक उससे छुप नहीं सकती थी। ऊपर से इशिका खुद मेडिसिन एक्सपर्ट थी। मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी पिल्स सब एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है, इशिका ने ठंडे लहजे में कहा। कुछ देर बाद जब उसे खींच लगने लगा तब वो बाथरूम से बाहर निकली। वो राधिका को बिना बताए चोरी छुपे बाहर जा रही थी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। शायद मेरे पूछने पर आप बहाने बनाए मिसेस सिंघानिया, लेकिन ऐसा कुछ तो जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ तो चल रहा है, आज नहीं तो कल मैं पता लगा लूंगी और पूरे सबूत के साथ आपका सामना करूंगी, इशिका ने सख्त आवाज में कहा। इस वक्त वो सीधे गायनिक के पास अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए जा रही थी ताकि रिपोर्ट के साथ राधिका से बात कर सके।